फिलोरा जीतने के बाद सियालकोट की तरफ बढ़ते हुए जैसे ही पूना हॉर्स के टैंकों ने सीमा पार की, कमांडिंग ऑफिसर अदी तारापोर ने अपने नंबर दो मेजर निरंजन सिंह चीमा को कोने में बुलाया। उस लड़ाई में उनके साथ लड़ने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह याद करते हैं।
हमारे सबसे सीनियर मोस्ट स्क्वाड्रन कमांडर थे जनरल चीमा। जनरल चीमा भी पूना के रहने वाले हैं, तो ये भी पूना के रहने वाले हैं, तो इनके आपस में काफ़ी दोस्ती थी। वो सीनियर भी थे, तो एक एज ग्रुप के थे वो। तो इन्होंने जनरल चीमा से कहा था कि देखो, हो सकता है कि लड़ाई में कोई मर भी सकता है, अगर किसी वजह से मेरी कैजुअलिटी हो जाती है, ये लड़ाई के बारे में ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो नंबर वन तो मेरा क्रिमेशन करना, नंबर टू मेरे एक ही लड़का है जेरेक्सिस, उसको कहना फौज ज्वाइन करेगा और पुनः ज्वाइन करेगा। बड़े पूजा पाठ वाले आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रेयर बुक और मेरी अंगूठी मेरी वाइफ परीन को देना, और मेरा ये फेवरेट फाउंटेन पेन है ना, मेरी डॉटर जरीन को देना। ये पहले ही ये बता गए थे। मैं गया जब वहाँ, जा डेड बॉडी देखी, तो यू नो कैसा फील होता है आपको, वो उनकी डेड बॉडी और उनके साथ जो आयो था जसबीर, उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई टैंक के ऊपर। जनरल चीमा ने मेरे से कहा कि भाई अजय, इसको तो क्रिमेट करना है। मैंने कहा अगर क्रिमेट होगा तो यहीं होगा। दुनिया ने कहा क्रिमेशन करोगे तो यहाँ आग लगेगी, तो ऊपर से फायर आएगा। मैंने कहा नेवर माइंड, अगर इन्होंने कहा क्रिमेशन यहाँ होगा तो यहीं होगा। और हमारे एक जे सी ओ थे प्यारे लाल साहब, जाट जे सी ओ, उन्होंने सब कुछ बंदोबस्त किया क्रिमेशन का। क्रिमेशन किया, फायरिंग आई, प्यारे लाल साहब मारे गए, पर क्रिमेशन हुआ।
5 दिन बाद लेफ्टिनेंट कर्नल अदी तारापोर पाकिस्तानी टैंक के गोले का शिकार हो गए। इससे पहले भी उनकी बाह में टैंक के गोले का एक शार्पनर आकर लगा था, जिससे उसमें गहरा घाव हो गया था। उन्होंने इलाज के लिए वापस जाने से इनकार कर दिया था और अपनी बाह में स्लिंग लगाकर लड़ते रहे थे। तारापोर की बेटी जरीन बॉयस ने बीबीसी को बताया,
चिवंडा में जब उनको हाथ में स्नैपल्स लगे थे, मेरे पिताजी वाज अ वेरी लॉयल पर्सन और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत अपने सिर पर लेते थे, तो उनको लगा कि अगर जो वो छोड़ के चले जाए, इनके सोल्जर्स और उनके ऑफिसर्स जो उनके बच्चे जैसे थे, उनको कौन देखेगा। ऐसे तो थे जनरल चीमा, सब थे, पर मेरे पिताजी को लगे कि वो थे तो सब कुछ ठीक रहेगा करके, इसलिए। और वो बहुत ब्रेव आदमी थे। अरे ये क्या है, जो सब लोग मुझे कहते थे कि बहुत ख़राब था हाथ, सिंह में वो मॉर्फिन के इंजेक्शंस देते थे, पर फिर भी वो लीड करते थे, क्योंकि उस टाइम में क्या हुआ था कि उनका रेजिमेंट फोर्स से अंदर जा रहा था, तो उनको लगता था कि अगर जो मैं अभी स्टॉप कर दूं तो इतने फोर्स से हम अंदर नहीं जाएंगे।
लड़ाई के दौरान जब आगे से उनके पास SOS आया कि तुरंत कुछ टैंकों की दरकार है, तो वो खुद अपना टैंक लेकर आगे पहुंच गए।
उन्होंने ऑर्डर दिया कि पूना हॉर्स चविंडा के आसपास एक रिंग डालेगी और रात को इसको इन्फेंट्री आके अटैक करेगी। तो हमारी रेजिमेंट को वो रिंग डालने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए। उन ऑब्जेक्टिव्स को एक एक स्क्वाड्रन ने कैप्चर किया। एक ऑब्जेक्टिव था जसोरन, एक था वजीर वाली। उनको कैप्चर किए बाद हमने पूरी रिंग तो डाल दी थी, अटैक नहीं हो सका। जब रात को अटैक नहीं हुआ तो हमारे को ऑर्डर दिया कि और आगे जाओ, बुटो डोगरांदी जो कि दूसरी तरफ चविंडा को, उसको जाके कैप्चर करो। तो 14-15 तारीख को हमने ये जसोरन और वजीर वाली तो कैप्चर कर ली थी। फिर मेरी स्क्वाड्रन को टास्क मिला कि आप जाके बुटो डोगरांदी को कैप्चर करो। तो मैं स्क्वाड्रन, उस टाइम हमारी टैंक में कैजुअलिटी हो गई थी, तो मेरे पास तकरीबन 60 टैंक थी। उन 7 टैंकों को लेके और इन्फेंट्री थी हमारे पास गढ़वाल की, उनको लेके हमने भुट्टो डोगरांडी को अटैक किया और कैप्चर कर लिया। जैसे हमने कैप्चर किया, उनका काउंटर अटैक आया टैंकों से और इन्फेंट्री से, तो वहाँ काफ़ी लड़ाई हुई। उसमें हमारी कैजुअलिटीज़ हुई, उनकी भी कैजुअलिटीज़ हुई। तो मैंने CO साहब से रीइन्फोर्समेंट्स मांगे कि आप जल्दी से जल्दी कोई और टैंकें भेजो। तो उन्होंने जो सबसे नज़दीक स्क्वाड्रन थी, उसको जितनी भी टैंकें वहाँ खड़ी थी, उनको अपने साथ लेके खुद आ गए और मेरे टैंक के बिल्कुल लेफ्ट पे आके और पोजीशन ले लिए, खुद भी फायरिंग शुरू कर दी।
उसी दौरान उन्हें पाकिस्तानी टैंक का एक गोला लगा। उनकी यूनिट के लोगों को लगा कि वो घायल भर हुए हैं।
उसी दौरान में उनके टैंक को शॉट लगा और वो इंजर हो गए। मैं तो ये सोचता था इंजर हुए, पर उनका शॉट इतना ज्यादा था कि ऑलरेडी उनकी कैजुअलिटी हो चुकी थी, मुझे नहीं पता लगा था। शाम के टाइम जब अंधेरा हुआ, जब मुझे पता लगा कि सीओ साहब की डेथ हुई, खुशाब टैंक पे बैठे हमारे, वो टैंक हिट हो चुकी थी तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो वहाँ से उनको दूसरी टैंक में बिठा के ले गए वहाँ से। तो रात के टाइम जब हमने पीछे आए तो वो टैंक को वहीं छोड़ना पड़ा क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसी टैंक को उठा के ले गए वो, जो कि उनके वॉर मेमोरियल पे लगी हुई।
तारापोर हमेशा अपने टैंक के कपोला पर खड़े होकर युद्ध भूमि का मुआयना करते थे। आखिरी दिनों में उनका बायां हाथ भी स्लिंग में बंधा हुआ था।
जब मेरे को कोई ने बोला कि उन्होंने वायरलेस ने बोला लेट्स गो गेट देम जेंटलमैन, और फुल स्पीड से हमारी टैंक्स गए। ना मेरे नॉर्मली क्या करते उन लोग कपोला बंद करते, पर मेरे पिताजी ने कपोला खुला रखा और ऊपर खड़े थे सो दैट ही कुड सी द बैटल फील्ड। उन्होंने ऐसे किया ना तो उनके जूनियर्स लाइक मुझे हमेशा कोई कहता है यार हमारी तो इतनी मजाल नहीं थी कि हम हमारा कपोला बंद करें, तो हमको भी हमारा कपोला खुला रखे। तो जब हम लोग ऐसे गए पाकिस्तान के ट्रूप्स जरा सरप्राइज्ड हो गए कि ये सब लोग ऐसे सिर ऊपर करके आ रहे हैं, तो वो करेज उनके ट्रूप्स में भी गया।
हमारे क्या टैंक के अंदर कपोला होता है ना, उसके अंदर कर्ण तारापोर का भी कपोला अंदर घुसते ही नहीं थे। वो कहते जब तक कमांडर दिखाई नहीं दे तो कैसे पता लगेगा कमांडर, नहीं तो हर एक टैंक ही दिखाई देगी ना। हमेशा ऊपर ब्लैक पैरी पहन के चश्मे लगा के ऐसे खड़े रहते थे वो, सबको दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनका कोड वर्ड यही था, अगर मरेंगे तो साथ मरेंगे, जीतेंगे तो साथ जीतेंगे। उनको डर तो लगता ही नहीं था ना।
लड़ाई के दौरान उनकी कमांड का लोहा उनका सामना कर रहे पाकिस्तानियों ने भी माना था। 1965 में पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन गुल हसन खान ने अपनी आत्मकथा में लिखा है,
25 कैवलरी के कमांडर कर्नल निसार खान ने मुझे बताया था कि तारापोर के वायरलेस इंटरसेप्ट को सुनना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख होती थी। उनका अपने लोगों को कमांड देना सुनते ही बनता था।
कर्नल तारापोर पूना हॉर्स में संयोग वश ही आए थे। पहले वो हैदराबाद स्टेट की सेना में हुआ करते थे। एक बार भारतीय स्टेट फोर्सेस के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल एल एदरोस उनकी बटालियन का निरीक्षण कर रहे थे।
ये स्टोरीज हैदराबाद लांसर्स की है, इंडिपेंडेंस के पहले, जस्ट बिफोर द हैदराबाद लांसर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में असमारा गए थे। तो उसके पहले वो जो नए सिपाही आए थे ना उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। तो मेरे पिताजी हैदराबाद लांसर्स में थे पर इन्फेंट्री में थे। तो क्या हो गया कि तभी जब उन लोग ट्रेनिंग पर थे तो एक सिपाही था जो जनरल एल्दरूस, वो जनरल ऑफ द हैदराबाद आर्मी थे, वो थे। तो ये सिपाही जरा नर्वस हो गया, तो उसने जो ग्रेनेड लॉब किया तो रॉन्ग जगह में लॉब किया और जनरल एल्दरूस के तरफ लॉब किया। तो मेरे पिताजी ही वाज एन ऑफिसर, पर उन्होंने बाउंड्री के ऊपर से जंप मारी और ग्रेनेड को पकड़ के वापिस दूसरी दिशा में फेंकी, उतने में ग्रेनेड स्प्लिंट हो गया, बर्स्ट हो गया और मेरे पिताजी के पूरे स्प्लिंटर्स उनके चेस्ट पर लग गए। जब वो अच्छे हो गए तब जनरल एल्दरूस ने उनको बुलाया और कहा कि आपने मेरी जिंदगी बचाई, मैं आपके लिए क्या कर सकता है। मेरे पिताजी राइडिंग के बहुत शौकीन थे, तो उनकी हमेशा इच्छा थी कि वो इन्फेंट्री छोड़ के कैवलरी में जाए। तो उन्होंने जनरल एल्दरूस को बोला कि आप एक चीज़ मेरे वास्ते कर सकते हैं, मेरा ट्रांसफ़र आप कैवलरी में कर सकते हैं। तो जनरल एल्दरूस वॉज कर्नल कमांडेंट ऑफ द फर्स्ट हैदराबाद लांसर्स। सो दूसरे दिन मेरे पिताजी की ट्रांसफर हैदराबाद लांसर्स में हो गई।
कर्नल तारापोर की बहादुरी का जिक्र करते हुए जनरल अजय सिंह कहते हैं कि उनको आगे आकर पाकिस्तानी टैंकों पर फायर करने की कोई जरूरत नहीं थी।
उनको बूटो डुकराने पे आने की क्या जरूरत थी, किसी और स्क्वाड्रन को नहीं भेज सकते थे। मैं आपको बताऊं, जब फर्स्ट बड़ी टैंक बैटल हो रही थी तो एक ऑफिसर, मेरा साथ वाला ऑफिसर था जो वहाँ साथ खड़ा हुआ था, उसने उनको कहा कि सर आप अपनी पोजीशन चेंज करके थोड़ी कवर में चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, जहाँ तुम हो मैं हूँ, अगर तुम्हारे गोला लगेगा तो मेरे भी लगेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस किस्म के आदमी थे वो, तो जब बच्चे थे उनकी तकदीर में लिखा हुआ था, उनके दिमाग में ये इच्छा थी कि मैं आर्मर्ड कोर में जाऊं, फौज में जाऊं, कुछ करके दिखाऊं।
जरीन बताती हैं कि उनके पिता के हीरो नेपोलियन थे, उनके पास नेपोलियन पर बहुत सी किताबें थी।
पिताजी हमेशा कहते थे नेपोलियन वाज अ मिसअंडरस्टूड मैन, ही वाज एन एक्सेलेंट जनरल, और ये कोड नेपोलियन भी उन्होंने जो फ्रांस के वास्ते किया है, इट शोज दैट ही वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन। तो मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि इतना छोटा सा आदमी था पर इतने बड़े काम उसने किए हैं, और जिस तरह से उनके कैंपेन्स उन्होंने प्लान किए थे वो तारीफ काबिल है। मेरे पिताजी चाइकोस्की को बहुत पसंद करते थे, वो जो कैनन्स बूम होते हैं, दैट वाज फेवरेट।
लेफ्टिनेंट जनरल चीमा की पत्नी उषा चीमा ने एक जगह लिखा है,
65 की लड़ाई पर जाने से पहले मैं अपने पति को पूना रेलवे स्टेशन छोड़ने आई थी। ट्रेन छूटने ही वाली थी कि तारापोर मेरे पास आए। बोले, उषा तुम चिंता मत करो, मैं निरंजन का पूरा ख्याल रखूंगा। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। मेरे पति तो सुरक्षित लड़ाई से वापस लौटे, लेकिन तारापोर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए।
कर्नल तारापोर की बेटी जरीन बॉयस को अभी तक याद है कि 1966 के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए वो और उनकी माँ दिल्ली गए थे।
अवार्ड विनर्स को, माता जी को कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के पास बैठा गया ऊपर, और हम बच्चे लोग आगे की इंक्लोजर में थे। मेरी माता जी वॉज ओनली 41 ईयर्स ओल्ड, राधाकृष्णन था। तो जब साइटेशन पढ़ा गया, वेरी वेरी टचिंग एंड वेरी वेरी हार्ड। नाम बुलाते हैं तो जो आपका एस्कॉर्ट है उसके साथ ऊपर डायस पर जाना पड़ता है, फिर वहाँ करीब 2 मिनट के वास्ते, 2 ही मिनट पर खड़े होने पड़ते हैं जब तक साइटेशन पढ़ा जाता है। और मेरी माता जी हमेशा बोलते थे कि दोज वर द हार्डेस्ट 2 मिनट्स ऑफ माई, आँख में आंसू आ जाते हैं। और जब राधा कृष्णन मेरी माता जी को ये दिया, उसने देखा कि शी इज सो यंग, तो उनके हाथ पर ही रो रहे हैं, ये क्या, बट इट्स अ वेरी टचिंग मोमेंट।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।